レハレハレクリシュナ。スワガタカテヘアプサッカーアンタラシュクリシュナハウナアマッサンスーラッケバクトンキオーセーアルダネワタカテヘアパワナアトマジャレバティレバティマタニアUn dono is do bhakt dampatya ka aaj 25wa vivaha gaant ka hari katha ke madhyam se hari kirtan ke madhyam se bhakton ke sang mein ye utsav manane kaAbhutpurv jo ayojan kiya hai iske liye dhanyavad karte hain. Nahi to praya aise vivahon ke varshgaanth ko hotelon ke andar bekar ke kharche ke beech mein aatmapatan ke raste ke upar dekha dekhi ke mahol meinपाश्चात्य संस्कृति का अनुकरण करते हुए यहां तो हम खड़ताल बजाते हैं वहां वो गिलास टकराते हैं तो ये अच्छा किया कि वापस लौटे अपनी संस्कृति की ओर विवाह भी किया था तो वैदिक विधि से किया था यज्ञ किया थाभगवान का देवताओं का आवाहन किया था विवाह को संस्कार कहा जाता है और विवाह भगवत गीता में तो श्रील प्रभुपाद ने जहां लिखा है यज्ञ तप दान क्या दान है ना कर्म न त्यजेत क्या शब्द तीन क्या है तप यज्ञ तप दानदान भी है ना हां यज्ञ तप दान कर्म न त्यजेत इन तीनों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए पावनानी मनीषिणी नाम जो मनीषी है मनीषी का मतलब मुनि मुनि का मतलब जो आध्यात्मिक पथ में प्रगतिशील हैं उनको भी पवित्र करते हैं ये और इस श्लोक के भावार्थ में श्री प्रभुपाद ने लिखा है कि वैदिक संस्कृति में विवाह यज्ञ है विवाह यज्ञ है और ये यज्ञ कभी त्याज्य नहीं है कभी छोड़ना नहीं चाहिए सन्यासी होने के बाद भी जबकि सन्यासी का अर्थ है विवाह के संबंध से अपने आप को ऊपर उठा लेना वानप्रस्थ और फिर सन्यास फिर भी प्रभुपाद ने विश्व के अंदर 66 में ही आध्यात्मिक दृष्टि से पाश्चात्य देश के लड़के और लड़कियों को भारतीय वैदिक संस्कृति आध्यात्मिक संस्कृति के अंतर्गत विवाह का संस्कार संपन्न कराया वो विवाह को जानते नहीं थे लड़के लड़कियां साथ घूमते थे ये 66 की बात कर रहे हैं उनको कहा ऐसे लड़के लड़कियां साथ नहीं रह सकते हैं अगर आपको साथ रहना है तो विवाह में साथ रहो और विवाह संस्कार संपन्न किया विवाह संस्कार वैदिक संस्कृति का ऐसा संस्कार है जो हमारे कुल परंपराओं को जो कुल परंपराएं हैं कौन सी कुल परंपराएं हैं जो वैदिक धर्म के अंदर परंपराएं हमको निभानी होती हैं उनकी पूर्ति के लिए विवाह संस्कार किया जाता है जैसे साधु महात्मा अब व्यास देव को विवाह करने की आवश्यकता नहीं थी भगवान के अवतार थे वेद का विस्तार के लिए आए थे लेकिन ये सारा वैदिक साहित्य जो उन्होंने लिखा उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए उनको पुत्र उत्पन्न करने की आवश्यकता, जिसको ये सारा साहित्य दे के जाए ताकि ये परंपरा चले। तो वेदव्यास ने विवाह किया, सुखदेव गोस्वामी का प्रकट्य हुआ और उसके द्वारा भागवत इस धरती के ऊपर प्रचारित हुआ। तो विवाह का उद्देश्य क्या रह गया? जो परंपराएं हैं, जो धार्मिक आध्यात्मिक शिक्षाएं हैं, वो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, उसके लिए विवाह आवश्यक है। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत गहरा इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये सृष्टि भगवान बनाते हैं ना, तो उन जीवों को जो बंधे हुए हैं माया के तीन गुणों के अंतर्गत, उनको एक मौका देते हैं, एक अवसर देते हैं कि वो अपने आप को मुक्त करा ले। इस सृष्टि का एक ही उद्देश्य है भगवान का कि एक चांस दिया जाए, मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए जीवों को कि वो अपने आप को बंधन से मुक्त करा ले और वापस अपने घर भगवत धाम लौट जाए। तो उन जीवों के आने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया और ब्रह्मा जी ने अपने ही श्री अंग से, अपने ही शरीर से स्त्री और पुरुष को उत्पन्न किया। क्यों उत्पन्न किया? सृष्टि करने के लिए। सृष्टि क्यों करनी है? क्योंकि जीवों का उद्धार हो सके, नहीं तो पड़े रहने से क्या फायदा। भाई जेल से निकलना चाहिए, बंधा हुआ है तो खुलना चाहिए, ये चांस देना है। तो सृष्टि को बढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने ही अंग से एक पुरुष पैदा किया और एक स्त्री पैदा की उल्टे हाथ से। तो जो पुरुष हुआ उसका नाम मनु हुआ और उसका नाम स्वयंभू मनु हुआ, क्योंकि उसको माता पिता नहीं थे, ब्रह्मा जी ने उसको उत्पन्न किया था। और स्त्री का नाम शतरूपा हुआ। तो ये पहली स्त्री इस धरती के ऊपर सृष्टि को करने के लिए उत्पन्न की गई। इसके बगैर सृष्टि नहीं हो रही थी, इसके बगैर सृष्टि हो ही नहीं रही थी, बढ़ नहीं रही थी। मन से तो पुत्र पैदा किया लेकिन बढ़ नहीं रहे थे। तो जो भगवान का उद्देश्य सृष्टि करने का है, वो उद्देश्य है हम सबका हित करना। हित करना कि हम बंधन से मुक्त हो जाएं, जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएं, बार बार संसार में भटकने से अपने आप को सुरक्षित कर लें, आजाद कर लें, मुक्त कर लें। तो इसलिए मनु और शत्रुपा ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से, आशीर्वाद से सृष्टि करना शुरू की और उनका जीवन, दंपत्य जीवन दीर्घ काल तक जला। हम तो 25 साल की वर्षगांठ से बहुत खुश होते हैं कि इतना साल हमने निभा लिया, बहुत बड़ी बात कर ली। और मनु के एक दिन में 14, और जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो ये मनु बाद में, ये स्वयंभू मनु तपस्या करने के लिए चला गया, लेकिन बहुत समय दीर्घ काल तक उसने अपनी दंपत्य जीवन को निभाया। हरे कृष्णा। 25 साल इस धरती के लोगों के लिए बहुत बड़ा समय है, और इतना निभा लिया तो बहुत बड़ी बात है। ये तो मेरे को तो हंसने की बात याद आ रही है। एक बार जहाज में जा रहा था, आगे वो मैगजीन पड़ा है, उसको खोल के मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा था 20 साल शादी की वर्षगांठ थी, 20वीं। ये तो पास कर गए, पवन निमाय तो 25 पहुंच गए, तो इसमें नहीं आते हैं, लेकिन 20 वाली जो है उसकी कथा क्या थी। लिखा था 20 साल शादी की गांठ थी, रात को पति बाहर अपने घर के आंगन में, पार्क में बैठा, सर के ऊपर हाथ रख के चिंता में बैठा था। तो पत्नी बड़े प्रेम से कहा कि आज शादी की गांठ है, आप इतने चिंता में क्यों हो? पति ने कहा, आपको याद है हम विवाह से पहले मिले थे, आपके पिताजी ने हमको देख लिया था, आपको मालूम नहीं है, मेरे को आपके पिता ने पकड़ के कहा था या तो मेरी बेटी से शादी कर लो नहीं तो 20 साल जेल में डाल दूंगा। अगर 20 साल जेल में गया होता तो आज आजाद हो जाता। उसने अपना रोना धोना ऐसे सुना, ये एयरलाइन के मैगजीन में लिखा था, मैंने पढ़ा तो मुझे आश्चर्य लगा। उस दिन मैंने जो डिसीजन लिया उसके ऊपर मैं सोच रहा हूं, आज 20 साल बीत गए। तो ये बंधन, ये बंधन खुशी खुशी हम अपने आप स्वीकार करते हैं। ये दुनिया में है बंधन, ये बंधन है। हम समझते हैं, असल में पुरुष समझता है कि मैं स्त्री को बंधन में डालता हूं, गले में मंगलसूत्र डालता हूं, वो तो दिखने में आता है लेकिन स्वयं सारी उम्र बंधा होता है, किसी को नहीं दिखता है। ये बड़ा अच्छा सा एक रीति रिवाज है, बहुत सुंदर सा है। तो ये बंधन इसलिए जरूरी है कि सृष्टि में अच्छे संतान को उत्पन्न करके और आध्यात्मिक शिक्षाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया जाए। लेकिन अब तो शादी करने की सबको जरूरत है लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। कल ही हम आने से पहले दिल्ली के अंदर डॉक्टर पूरे भारत के पीडियाटिक्स की पीडियाटिशियन थी, उनकी कॉन्फ्रेंस थी पीडिकॉन 2012 और विषय था कि लड़कियों को भ्रूण हत्या मत करो, बच्चियों को मरने मत मारो। तो हमको बुलाया था ऊपर, हम बैठे थे पैनल में, वो जब बता रहे थे कि इधर हरियाणा में 740 लड़कियां और 1000 लड़के हैं, बड़ी समस्या हो रही है, इसलिए मत मारो। मैंने बोला लड़कियों को, क्योंकि कम हो रही है, तुम्हें परेशानी हो जाएगी, विवाह कहां होगे तुम्हारे बच्चों के, तुम्हारी परेशानी की वजह से कर रहे हो। अरे तो क्या लड़कियों को नहीं मारना चाहिए तो लड़कों को मारना चाहिए, क्या कहना क्या चाहते हो? तो ये कोई सिद्धांत है कि लड़कियों को मत मारो, इसका मतलब क्या, इम्प्लाइड क्या है कि लड़कों को मार सकते हो? हाँ, ये कोई बुद्धिमानी का, इसमें कहीं आपको विजडम नजर आती है? जो जीव इस धरती के ऊपर आता है अपने कर्म के फल को भोगने का, उसको रोक के रास्ता बंद करना ऐसे है जैसे ट्रैफिक कहीं जाम हो जाए, आपको कितनी कष्ट होता है। आधा घंटा कहीं ट्रैफिक जाम होती है, आप आगे नहीं जा सकते हो, आपकी गति रुक जाती है तो आप कितने परेशान होते हो। गति रुक जाती है तो उस जीव की गति रुक जाती है आने के लिए। और ये कौन करते हैं? मैंने भाई तो डॉक्टरों को कहा, ये आपने शुरू किया है, ये आपने शुरू किया, इन लोगों का क्या पता, इन लोगों को क्या पता कि कैसे भ्रूण हत्या होती है, इनको तो ये शब्द भी नहीं आता था, ये भी तो आपने सिखाया है। अब आप परेशान होकर कहते कि इसको बंद करो, तो आप ही बंद करो, और कौन बंद करेगा, करने वाले आप हो। आश्चर्य, ये बहुत बड़ा संकट का, विवाह तो करना है लेकिन बच्चे नहीं पालने। अरे बच्चे पैदा करने के लिए विवाह विवाह किया जाता है, ये क्यों नहीं समझ में आता? अरे ब्रह्मा जी ने इसलिए कहा कि तुम विवाह करो, बच्चे पैदा करो, सृष्टि पैदा करनी है, इसीलिए विवाह करना है कि सृष्टि पैदा करो। सिर्फ लड़का चाहिए फिर क्या करोगे? बना बाबा मरे को दे दे साधु बनाओ, नहीं उसकी शादी करेंगे, लड़के की शादी करें किससे करोगे? बना दो बाबा, ये भी नहीं करेंगे। कितने हम बहुरूपियां हैं, मान है ही मां, लड़का पैदा होता है तो खुश होती है, लड़की पैदा होती है तो परेशान होती है। अरे तू तो मां है, तेरे ऊपर तो खुश होना चाहिए, तू खुद लड़की है कि नहीं है, क्यों नहीं ये समझ? कितना बहुरूपियापन, विवाह को जब पाश्चात्य दृष्टि से हमने भोग का साधन समझ लिया तब से ये बीमारियां सब आ गई, तब सब ये बुराइयां तब आई जब ने हमने विवाह को भोग का साधन समझा है। हमने डॉक्टरों को कहा भोग सब करना चाहते हैं और बच्चा कोई नहीं पालने चाहता है, ये विवाह नहीं है, ये विवाह का मजाक है। तो बहुत धन्यवाद इस परिवार को और आप सब जो यहां बैठे हैं, 10 15 20 साल से सबका विवाह हुआ है तो चल रहे हैं और बच्चे होंगे घर के अंदर जिनको शिक्षा दीक्षा नहीं दोगे तो फिर काहे के लिए, तो करो विवाह करके जाके बैठ जाओ आश्रम में, साधु बन जाओ, बच्चे भी नहीं पैदा करने, फिर घर पर मनाने की जरूरत क्या है? आप फिर घर क्यों बना रहे हो, काहे के लिए मुसीबत में पड़ रहे? सारी बात घूम फिर के आएगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसी से पूछो कुछ कमा क्यों नहीं, बड़े बच्चों के लिए यही कहते हैं कि नहीं कहते? तो बच्चे बोला वो तो नहीं है, बच्चे चाहिए नहीं, बच्चों के लिए काम काम कर रहे हैं सब। कितना बड़ा बहुरूपियापन है आदमी का। और ये सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति के भोग विलास साधी को जब बना दिया, भोग विलास का साधन बना दिया, तब शादियां टूटने भी शुरू हो गई। भोग का सुख नहीं मिला, शादी टूट गई। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ के अंतर्गत प्रभुपाद का कई चिट्ठियों में हमको मिलेगा। किसी ग्रस्त ने कहा कि मैं तो मंदिर में ग्रस्त से निकल के सेवा करना चाहता हूं। प्रभुपाद ने कहा क्यों अपने दायित्व से भागना क्यों चाहते हो, एक बार विवाह किया है तो इसको निभाना चाहिए, ये दायित्व अपना पूरा करना चाहिए, ये बहुत बड़ा एक आपने कर्तव्य है, भगवान की सेवा का कर्तव्य इस धरती के ऊपर किसी जीव को लाने का उठाया है, इस कर्तव्य के से भागो मत। ये एक जीव को इस धरती के ऊपर लाने का आपको दायित्व दिया गया है विवाह में, तो आप इससे भागो मत, आप इसको निभाओ। और मुझे आश्चर्य अभी भी लगता है आप सब भगवान की कृपा से संपन्न लोग हैं, खाते पीते हैं, 25-50 हजार रुपया कमाते हैं, 2-4 बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, आपके पास ये क्षमता है। आप नहीं बजट बच्चे पैदा करते हैं, और जो नहीं जिनके पास रुपया भी नहीं है, रोज लाते रोज कमाते हैं, उनके पास 10-10 बच्चे हैं, वो पढ़ा नहीं सकते, वो बदमाश जब चारों ओर घूमेंगे तब तो आप रहोगे कहां, आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा। आपके पास संपन्न हो तो आप क्यों नहीं अपने संतान का पालन पोषण करने में क्यों परेशान हो रहे, और जो नहीं कर सकते वो पैदा कर रहे, तो उनकी संख्या जब बढ़ गई तो फिर आप रहोगे कहां शांति से? ये बात समझ में कभी आई? हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। आपको वैसे सिर्फ एक उदाहरण देता हूं, सनातन भारत संस्कृति की रक्षा के लिए गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हर अपने शिष्य जो हिंदू थे उस वक्त में भारत संस्कृति के, उसका दूसरे नंबर का बेटा लिया, बोला ये मेरे को दो सेना में, इस सेना के द्वारा मैं धर्म की रक्षा करूंगा, और वो सिख बना। अब एक ही होगा तो दोगे किसको, कहीं किसी काम आएगा धर्म के? धर्म के काम भी नहीं आएगा, और वैसे आपके घर के काम को आना नहीं है, शादी होके उसको तो विलायत भेजना है, मेरा बच्चा अमेरिका पढ़ने गया, वो तो उधर ही रह गया, तुम इधर ही पढ़े हो, फिर पैदा क्यों किया? हमको आज तक समझ में नहीं आ रहा है ये लोगों की बहुरूपियापन के, अरे 4-5-10-20 जितने अधिक हो ये तो भाग्य की बात है, और फिर लड़कियों की बात है, ये हंस रही है, अरे राम 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 राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। मैं सच बोलता हूं, अच्छा है कि संतान अधिक हो। तो हमने बताया उनको बाद में कि वो मनु और शत्रुपा ने 3 लड़कियों को जन्म दिया और 2 लड़कों को जन्म दिया। पहले इस पृथ्वी के अंदर कोई अगर विवाह संस्कार के बाद संतान उत्पन्न हुआ तो 2 लड़के और 3 लड़कियां हुआ, तो 2 तो आप इसका रेशो समझ लो कितना होना चाहिए इस दुनिया में, 3 लड़कियों के ऊपर 2 लड़के होना चाहिए, ऐसा इस सृष्टि का पहला नियम ऐसे बना। लेकिन ऐसे योजना ये थी कि पहले 7 ऋषि तो पैदा हो चुके थे, अब उन 7 ऋषियों का विवाह कहां होगा, लड़कियां तो केवल 3 हैं। तब पहली लड़की का जब विवाह किया मनु ने अपनी का, और मनु विवाह करने के लिए अपनी लड़की को स्वयं अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ कर्दम मुनि के आश्रम में ले गया। पिता और माता अपनी लड़की का विवाह करने के लिए अपनी लड़की को साथ ले गए और जो एक घर गृहस्थी में रहने के लिए चीजों की आवश्यकता है वो भी साथ में उठाई। कोई लंबा चौड़ा पब्लिक पब्लिसिटी नहीं किया, कार्ड शादी का नहीं छापा, इनविटेशन किसी को नहीं दिया और पानी ग्रहण करने के लिए कर्दम को देवभूति का हाथ देकर मनु जी सामग्री घर चलाने की देकर आ गए। मनु राजा थे, उसके पास कमी किसी चीज की नहीं थी, कोई फार्म हाउस बुक कर सकते थे और बहुत बड़ा पंडाल लगा के और बहुत 56 भोग लोगों को खिला सकते थे। तो कल उस चर्चा में एक बात यह भी आई कि लड़कियों को क्यों नहीं पैदा करना होने दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां भार हैं, उसकी शादी में बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो कम खर्चा करो, ज्यादा करते क्यों? मनु की तरह उस लड़की को घर बना के दे दो कोई बात नहीं, लेकिन एक दिन में 25-50 लाख पब्लिक को खिलाओ। बाहर जाते बोलते ये भी नहीं किया इसने, ये भी आखिर में बदनामी ही लेनी है, खा पी के खुआर करके लोग जाते, का जरूरत है इसकी क्या? ये दिखावे वाला जो माहौल है इसने असल में लड़कियों को जन्म लेने से पहले मारने का कारण बनी। कौन सी चीज? ये दिखावे वाली शादियां, 25 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ की शादियां। अब वो लड़की पैदा होने के समय ही वो मां बाप आंकड़ा लगाते हैं कि इतना पैसा अभी अलग करो, ये इतना तो हमारे ऊपर अभी से जैसे ब्याज चढ़ गया है, ये तो उतारना है। ये कितनी गलत धारणा आ गई। और वेदों में तो कन्या दान लिखा है कि कन्या जिसको आई वो बहुत बड़ा धनी है कि दान करेगा। कन्या को संकल्प करके दान किया जाता है, ये उत्तम से उत्तम दान है, क्योंकि सृष्टि पैदा करने वाली स्त्री है जो विस्तार करती है। स्त्री का अर्थ है विस्तार करना, विस्तार करना का मतलब बढ़ाना, दो कुलों को जोड़ती है स्त्री। आदमी दो कुलों को जोड़ता नहीं है, स्त्री दो कुलों को दो परिवारों को जोड़ती है। तो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण, और वेदों ने तो मातृ देवो भव पहला शब्द लिखा है, स्त्री को पहला स्थान दिया है, पूजनीय कहा है कि आपके लिए माँ। वैसे भी स्त्री स्त्री होने से ज्यादा माँ होना वो अपने आप को सम्मानित मानती है, और स्त्री विवाह भी माँ होने का उसका जो जो मानसिक भावना है वो माँ होने की है। लेकिन कैसे भी आधुनिक कलयुग के प्रभाव में इसके अंदर जो भी त्रुटियां आई हैं उनको सुधारना चाहिए। ये विवाह गांठ 25 साल की अगर पवन तन्य पवन आत्मजा का मतलब हनुमान या भीम, जैसे प्रभु जी का पवन का मतलब पवन वायु देव, और आत्मजा उसके द्वारा उत्पन्न उसका पुत्र, और रेवत महाराज की पोती, तो बलराम जी के साथ जिनका विवाह हुआ। ये विवाह भी आपके यहाँ गुजरात में ही आगे सौराष्ट्र में संपन्न हुआ था। इनका विवाह तो दोनों विवाहित हैं वैसे। रेवती का तो विवाह सबको याद है कि बलराम जी के साथ हुआ, नित्य बलराम जी की जो है वो प्रियसी है। और पवन कुमार पवन देव का विवाह का कोई समाचार है किसी को? अभी तो हमारे को 25 साल से पता है, लेकिन पहले पवन देव का कहीं विवाह उसका वर्णन, वायु देव का विवाह नहीं है? ऐसे मत करो भाई, जो भी है ऋषि मुनि आप जो भी ढूंढेंगे आपको आधे से ज्यादा ग्रस्त मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ग्रस्त आश्रम में रहे वो, इसलिए हमारे शास्त्र ने ग्रस्त को आश्रम कहा है, ग्रस्त आश्रम है। तीन और जो आश्रम है उनका उद्गम स्थान है। ब्रह्मचारी भी ग्रस्त के घर में पैदा होगा, सन्यासी भी किसी ग्रस्त के घर में माँ का दूध पिया होगा तब पैदा हुआ है, वानप्रस्थी भी ग्रस्त में पैदा होगा। तीन आश्रमों का उद्गम स्थान भी ग्रस्त आश्रम है, और तीनों का पालन पोषण भी ग्रस्त आश्रम करता है। ब्रह्मचारी को जो ब्रह्मचारी खाना पकाना पकाता नहीं है, ग्रस्त पकाता है, दान में देता है। सन्यासी खाना पकाता नहीं है, भिक्षा मांगता है, ग्रस्त देता है तब खाता है। तीनों आश्रमों का उद्गम स्थान, तीनों आश्रमों का पालन पोषण ग्रस्त आश्रम करता है। तो ये बहुत बड़ा दायित्व है ग्रस्त आश्रम, इसलिए इसको आश्रम कहा है, जहां रहने वालों को भी विश्राम मिले, जहां ग्रस्त जीवन में, और वैसे भागवत में स्त्री को पुरुष के लिए दुर्ग माना गया है। दुर्ग का मतलब किला, किले का मतलब फोर्ट, जिसके अंदर पुरुष सुरक्षित होता है। स्त्री को पुरुष के लिए दुर्ग माना गया है, जो उसको पतन के रास्ते से बचाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण उसका जो रोल है इस मानव समाज में, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और दूसरा फिर देवहूति माता और कर्दम का जब विवाह हुआ, दूसरा इस विवाह का जब वर्णन आता है, तो देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया और फिर एक ही पुत्र हुआ। और देवहूति इन कन्याओं को उस वक्त में जन्म न लेने दिया होता तो हम में से कोई नहीं पैदा होता। इन्हीं ऋषियों की हम संतान है, जिनके घर में देवहूति की कन्याएं विवाह के गई। और भागवत के अंदर वैदिक शास्त्र में देखेंगे तो दक्ष के पुत्र 10,000 ले जाकर जो है हरियाशव को नारद जी ने नारायण सरोवर में साधु बना दिया, दोबारा बच्चों को लेकर चला गया। अब उसने कहा सृष्टि करने का एक ही रास्ता है कि कन्या उत्पन्न की जाए, और तब कन्या उत्पन्न करके 60 है मेरे ख्याल में दक्ष की, और उन्होंने सब ऋषियों को विवाह के दी, उनसे हमारे गोत्र और कुल चले हैं। तो ऐसे वैदिक संस्कृति में दिखता है कि कन्या अधिक संख्या में जब ग्रस्त के घर में होती है तभी समाज के अंदर समझो कि अब ये भी एक बात देख लो, जिस घर में बच्ची है उस घर में संस्कार होंगे बोलने के, उठने के, चलने के। जिस घर में बच्ची नहीं है वो पागलों की तरह एक दूसरे झड़ते गालियां देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। लड़की होने से घर के अंदर संस्कार होते हैं, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और विवाह जब होता है कन्या का तो मंत्र जो पढ़ते हैं वो लक्ष्मी नारायण की पूजा के पढ़ते हैं। और स्त्री को जब घर में विवाह करके लाया जाता है तो पुराने जमाने की तो रीतें रस्में थी कि लक्ष्मी घर में आ रही है, ऐसे मानते थे। चाबी घर की उसके पास हुआ करती थी, आजकल तो लाकर में सब कुछ है, चाबी है तो क्या करेगा अब तो चाबी चौकीदार वाली बात हो गई, अब तो घर में कुछ है नहीं। पहले चाबी की मालकिन वो लक्ष्मी। हमने आपको कभी बताया होगा कि जब इस नई विवाहित वधू घर में आती थी तो सास लाल कुंकम का पानी थाली में रखती थी और उसके अंदर उसके पांव पहले पड़े और घर के अंदर उसके लाल पांव के निशान पड़ते थे। ये हमने देखा था कन्याओं को, अब तो इतनी बड़ी ईडी के साथ ही घर में आती है लोग, तो निशान कहाँ होगा भगवान जाने वो निशानों वाला तो जमाना चला ऐसे निशान घर में हुआ करते थे। देखे थे आपने, किसी को याद है पुराने जमाने की कोई? हाँ जी, है किसी को याद? हाँ, आपके निशान हुए थे इसलिए दिलीप नहीं आया है अरे कृष्णा जो भी हो, जो विवाहित हैं वो ये समझ लें कि भगवान ने आपको इस दुनिया में कुछ जीवों के उद्धार करने के लिए इस आश्रम में प्रवेश करने का मौका दिया है, उन जीवों को आप आने से रोको मत। उसके खाने पीने की व्यवस्था भगवान करेगा, आपके करने से न करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कभी ये मत सोचो कि हम दुनिया को चला रहे हैं, ये मूर्खता है। जिसको भगवान जिस बच्चे को भेजता है उससे पहले उसके दूध की व्यवस्था करता है कि नहीं करता है? माँ के स्तन में बच्चे के जन्म से पहले दूध करता है क्या? पहले बच्चे के बाद दोबारा बच्चा होगा तो दूध नहीं पैदा करता है क्या भगवान? ऐसा कभी हुआ है कि दूसरे बच्चे के समय दूध नहीं पैदा किया, ऐसे कभी किया है क्या भगवान ने? हाँ, कभी ऐसे हुआ है मेरी माँ कि दूसरे बच्चे के जन्म के समय दूध पैदा नहीं होता, बस खत्म हो गया? नहीं, पहले बच्चे के समय थोड़ा कम होता है, बाद में ज्यादा बढ़ने लगता है। तो इसका मतलब भोजन की व्यवस्था तो भगवान ने कभी बंद नहीं किया उसकी। ये सब बहुत बुद्धिमानी से समझने की बात है। अगर ऐसा भगवान का प्लान होता तो जन्म से पहले भोजन ही नहीं देता, अपने आप जन्म लेके ही नहीं जी सकता। कितनी बड़ी उसने व्यवस्था की है कि माँ का जो प्रेम है बच्चे के लिए, वात्सल्य का जो प्रेम है, वो पिघल के दूध बन जाता है जो बच्चे का भोजन है। और जैसे ही दूध कम होने लगता है, बच्चे के दांत निकलने के लिए भगवान ने व्यवस्था की हुई है कि अब चबा के खा सकता है। और खाने के लिए भी सब व्यवस्था हर एक चीज की उसने करके रखी है, हर एक अपना भाग लेके आता है। निश्चित रूप से इस बात को समझना चाहिए कि हम किसी को पालन पोषण करते हैं ये हमारे बस की बात नहीं है, तो भगवान करता है। और हर एक अपना भाग लाता है, कन्या अपना भाग लाती है, लड़का अपना भाग लाता है, अपने कर्म लाता है। आप किसी का कुछ व्यवस्था करते हो ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को उसका कर्ता मान के मूर्खता के कारण भगवान के नेम को अपने हाथ में मत उठाओ। जैसे कहते हैं कानून को अपने हाथ में मत उठाओ, ला को अपने हाथ में मत उठाओ। अभी आप रास्ते में ला को हाथ में उठाओगे तो पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी आपको? तो जब प्रकृति का नेम है उसको क्यों हम तोड़ते हैं? प्रकृति के नेम को तोड़ने का हमें अधिकार नहीं है। अगर हम तोड़ते हैं तो हमको उसकी सजा मिलेगी और प्रकृति उसकी सजा देगी। इसलिए कृष्ण भावना भावित एक संपूर्ण विज्ञान है। गृहस्थ आश्रम के में कैसे जीना चाहिए ये भी एक बहुत बड़ी शिक्षा है। और बच्चों को अच्छी तरह से ऐसे ट्रेन किया जाए, बच्चों को ऐसे बचपन में ट्रेन किया जाए कि वो बड़े बन के कैसे सदगृहस्थी बन सकते हैं। अगर गृहस्थ में जाना है तो उसकी जवाबदारियां क्या है, ये उनको शिक्षा की जरूरत है। और बच्चों को ये शिक्षा देने की अति आवश्यकता है कि घर में भोजन कैसे बनाना चाहिए। पहले भिक्षा दे आदमी, साधु महात्मा घर में जाते माँ भिक्षा दे ऐसे बोलता था, भिक्षाम दे ही माँ, हे माँ भिक्षा दो। अरे भमा को बनाना ही नहीं आता है तो भिक्षा क्या देगी? रोटी नहीं बना रहे, ब्रेड उठा के लाके मुंह में डालेगी साधु के? और सच बोलते हैं कि दुनिया के अंदर भारत के अलावा रोटी बनाना 90% लोगों को नहीं आता है। 90% लोगों को रोटी बनाना नहीं आता है, वो सब ब्रेड खाते हैं। वो केवल आलू और ब्रेड दो ही चीजें, इधर घुमाओ उधर घुमाओ इसी के अंदर चलते हैं, और कुछ आता नहीं है। ताजा रोटी केवल आपके घरों में बनती है। दुनिया में ताजा रोटी खाने वालों को लाले पड़े हुए हैं, फ्रिज के अंदर से पुरानी पड़ी हुई ब्रेड निकालनी है, उसको गर्म करनी है और खानी है, आता ही नहीं है किसी को बनाना। भोजन के ऊपर कहीं रिसर्च आज तक हुई नहीं है, भोजन बनाने के ऊपर। प्रभुपाद ने इन लोगों को भक्त कैसे बनाया अगर आप देखेंगे तो रसगुल्ला और गुलाब जामुन खिला के चपाती, एक भक्त 18-20 चपाती गर्म गर्म खाता था और अकेले 70 साल के प्रभुपाद उसको बेल के खिलाते थे। तो ये प्रसाद खा के पाश्चात्य देशों के लोग भक्त बने हैं। तो गृहस्थ में प्रसाद बनाना आएगा तो कोई साधु संत भी सुखी रहेगा, नहीं तो ये जो आपका आजकल वाला जो खाना पाश्चात्य देश में खाने के ऊपर रिसर्च हुई नहीं है, कुछ नहीं बनाना आता है। मरे हुए आदमी का मांस उठा के उसको सेक के खाते हैं, अरे ये तो पूरा जंगली लोग खाते थे, बड़े कौन से तुम सुधरे हुए हो गए, जंगली लोगों का खाना था। इसको जंगली कहते थे ना, तो जंगली के स्तर से ऊपर आए हैं क्या? 10,000 साल में भी ऐसे कहीं रिसर्च नहीं हुई है भोजन के ऊपर। केवल भारत संस्कृति में भोजन बनाने का विज्ञान माँ को ऐसा सिखाती थी, माँ को सिखाती थी। माँ अपनी बेटी को कहती थी तुम भोजन करना अच्छी तरह से सीख लो बच्ची। प्रभुपाद ने कहा हर बच्ची को अच्छे से अच्छी रसोई पकाना आनी चाहिए। रसोई पकाना बच्ची का सबसे महत्वपूर्ण काम है। और रसोई पकाई तो भगवान को भोग लगेगा, सबको प्रसाद मिलेगा। अब बाहर से लाके कहां भगवान को भोग लगाएंगे? जो बाहर से लाना है वो तो भोग लग नहीं पाएगा। तो घर में बनाने की शिक्षा तो होनी ही चाहिए ना। तो गृहस्थ आश्रम धन्य है, 3 आश्रमों का उद्गम स्थान है और 3 आश्रमों का पालन पोषण करता है। और इस वक्त इस्कान संस्था के अंतर्गत अधिक से अधिक ग्रस्त भक्ति हैं, जो उनका समाज और समूह है। इनको बड़ी सावधानी के साथ लोगों की भेड़ चाल में न चलकर अपने परिवारों को आध्यात्मिक दृष्टि से सुरक्षित रखते हुए और विस्तार के साथ बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए कि हमारा समाज बढ़े, हमारा समाज वैष्णव बढ़ना चाहिए, कम करने की हमें जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक हमारा समाज बढ़ेगा तो अच्छी बात है। इस बात का डर मत रखना कि कौन खिलाएगा। खिलाने वाले ने जन्म लेने वाले से पहले उसके कर्मों के अनुसार उसकी व्यवस्था करके रखी है, उसकी चिंता आप मत करना। ये प्रभुपाद के इन शब्दों के ऊपर विश्वास करना हमको अभी भी विश्वास है। एक चिट्ठी में जब लिखा था कि हमारे मंदिर के अंदर हर समय आने वालों के लिए भोजन और भोजन की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी थी, चावल है, दाल है, पूरी है, सब्जी है, पकोड़ा है, हलवा है, ऐसे लिखा, ये हर वक्त तैयार होना चाहिए। जितने लोग आए उनको प्रेम से बिठा के भोजन कराओ, भोजन समाप्त हो तो दूसरा कराओ। और नीचे लिखा था, मत समझना कि तुम लोगों को खिलाते हो, रसोई घर की मालिक राधा रानी है। उसको कहते ही राधा सेवा है, वो राधा रानी रसोई घर की मालिक है। और राधा की सहस्र लक्ष्मियां, हजारों लक्ष्मियां राधा रानी से उत्पन्न होती हैं और उसकी सेवा में होती है। अब लक्ष्मी के पास किसी चीज की कमी नहीं है, तो आपका कभी भी इस व्यवस्था में व्यवधान नहीं पड़ेगा। इस बात के ऊपर आप निश्चित कर लो, भगवान हरेक के साथ उसके कर्म और उसका फल पहले भेज देता है। इसलिए ग्रस्त में सदग्रस्ती कर बन के रहना चाहिए। संतान उत्पन्न करने के लिए ही ग्रस्त आश्रम है, और संतान को उत्पन्न हो उसको वापस भगवत धाम भेजने की शिक्षा देना सबसे बड़ा दायित्व है ग्रस्त का। ये उससे भी बड़ा दायित्व, पहले पैदा करना फिर शिक्षा देना। इसलिए आप ये मान लो कि ये मुझे जो पत्नी ग्रस्त में मिली है ये असल में भगवान की सेविका है, मेरे को भगवान ने भगवान की सेवा करने के लिए सहायता करने के लिए दी है, मेरे भोग के लिए नहीं है, भगवान की सेवा के लिए, मेरी सहायता करने के लिए। ये शिक्षा में आ जाए जीवन में कि मेरे को इस धरती के ऊपर सृष्टि करने में भगवान के कार्य में भगवान ने मुझे ये अर्धांगनी दी है, ये भगवान की दी हुई मेरे को, इसको माना चाहे कि कृपा है, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे। और जो बच्चा मिल आ गया वो भी बच्चा भगवान ने हमको दिया है पालन पोषण करने के लिए, हम उसके ऊपर अधिकार जमाने का प्रयास करेंगे, हमारा है ऐसे नहीं, भगवान का है, हम इसके पालन पोषण की जवाबदारी हमारे ऊपर है। और इसको हमको अच्छा बनाकर, एक तो आने वाली पीढ़ी को अच्छा बना के देना है ताकि भविष्य में जो देश कैसे बनेगा, बच्चा आज का बच्चा आगे के चल के देश का मालिक बनने वाला है। आप इसके ऊपर आज एक थोड़ी देर के लिए विचार करो कि आप 50 साल के जो 40 से ऊपर हो रहे हो, आपने अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, जो बच्चे आगे चल के बड़े होंगे उनके लिए क्या मार्गदर्शन किया है। पैसा तो कमा लिया, घर तो बना लिए, लेकिन उनके लिए आपने किसी ने कुछ सोचा है? आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा के लिए किसी ने कुछ सोचा है कभी कि इन बच्चों का भविष्य कैसा होगा? जब हमारा भविष्य इतना, हमारे पूर्वजों ने सिर्फ खाद डाली वो फसल को बढ़ाने के लिए, आज 100 बीमारियों के बीच में हम घिरे हुए हैं, उनकी गलती का हम आज परिणाम भोग रहे हैं। आप विचार करके देखो कि हम जो गलतियां करके जाएंगे हमारे बच्चों को कितनी मुश्किल आगे आएगी। हम नई पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं इसके ऊपर कभी सोच लिया? तो ये सोचो कि भगवान ने जो बच्चा दिया है वो अच्छा सुंदर शिक्षित दीक्षित करके समाज के भविष्य के लिए और उस बच्चे के आध्यात्मिक वापस भगवत धाम जाने के लिए हमें तैयार करना है। उसका दायित्व निभाएगा वो, फिर और अपने बच्चे पैदा करेगा, ये संस्कार उनको देके जाएगा। तो ये परंपरा खत्म नहीं होनी चाहिए। और ये इस वक्त कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य है। कैसे भी हमारी सबसे बड़े आजकल भक्तों का समूह ग्रस्ती है, तो उन ग्रस्ती भक्तों को ग्रस्त धर्म को ठीक तरह समझना चाहिए और उसके अंतर्गत आगे बढ़ना चाहिए। 25 साल से हमारे पवन आत्मज और रेवती माता के आज इस 25 विवाह साल में उनको धन्यवाद करते हैं, और आप सब लोगों को आपके आने के लिए आपका पुनः एक बार स्वागत करते हैं। लेकिन इस ग्रस्त आश्रम के विज्ञान को समझिए, इसको भोग का आगार मत समझिए, संस्कारों का ये संस्कारों का एक बहुत सुंदर संगठित शास्त्रों के अंतर्गत मार्ग है जिसके अंदर हम अपने जीवन को दिशा दे सकते हैं, वो दिशा जो हमारे को भगवत धाम ले जाने में सहयोगी हो। हरे कृष्ण, धन्यवाद।
प्रभु जी की जय। आप लोगों ने कि प्रभु जी जिस प्रकार से अपनी जो भारतीय वैदिक संस्कृति शास्त्रीय संस्कृति जो है उस नाता से हम कभी कभी आ रही थी, और हम देखते हैं कि अपने भारतवर्ष में जब पहले की संस्कृति पूरी तरह से थी, जो शास्त्र वाले जीवन जी रहे थे।